حضرت جی تشریف لا رہے تھوڑی دیر میں, تو جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے عرض کر دیتے ہیں کہ ذکر کا کیا طریقہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کے لیے, چاہے کتنے عرصے سے ذکر کر رہا ہو یا آج آیا ہو, ذکر کی فضیلت کو حضرت اکثر بیان فرماتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ حضرت کی آپ صحت دیکھتے ہیں نا, کیسی صحت ہے. اس عمر میں انسان اپنے گھر سے نہیں نکلے, اب اللہ کے فضل سے حضرت کی جو اپنے گھر کے حالات ہیں وہ ایسے اچھے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. اور کوئی معمولی آدمی ہو وہ بھی جب اس طرح تکلیف میں ہو تو گھر سے نہیں نکلے. لیکن یہ کبھی آپ اگر 5 منٹ 10 منٹ کے لیے غور کریں کہ یہ اتنی تکلیفیں لے کر نہ صرف اندرونی ممالک ملک میں اور بیرونی ممالک میں جا کر یہ اللہ کے نام کے لیے بتاتے ہیں, اور بغیر کسی لالچ کے یا کوئی ایسی دنیاوی غرض غائب ہو تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. میں دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو ہماری جیسے ایک عرصے سے کہتے ہیں نا کہ میں ذکر کرتا ہوں, ہمیں بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ واقعی جو ہمارے اندر ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے کہ نہیں, کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں. اس کی پتہ وجہ یہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو ابھی تک وہ گناہوں میں بھی پھنسا ہوں, میرا کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے, اور میں کبھی کبھی ایک اپنی بات کو خوشنما بنانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا ہوں, اور نہیں تو لطیفہ وہی کر لیتا ہوں. لیکن پھر بھی کہتے ہیں بھائی تیرے سے مراقبات بھی ہو گئے اور آگے مقامات بھی چل رہے ہیں اور مناظر بھی ہو. بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا اس کو مل جاتا ہے. صرف جڑنے کی بات ہے, جب وہ جڑ جاتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے. پھر اس میں دو کیٹیگریز قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, ایک تو وہ ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, ان کو یقین ہی نہیں آتا اور اس بے یقینی کی وجہ سے نا وہ مارے جاتے ہیں. پہلی بات جو ہے تو یقین کر رہے ہیں, بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں اگر ان کا آپ آج رات ہونا بھی چاہیں تو آپ اپنے اس ذہن میں نہیں بٹھا سکتے کہ اللہ نے آپ پر کتنی نعمتیں کی ہوئی. کوئی آدمی سوچے تو صرف کہ میرے اوپر اللہ نے کس قدر نعمتیں کی ہوئی اور کیا میں ان کا شکر ادا کر سکتا ہوں. آپ اگر 24 گھنٹے بھی الحمدللہ کرتے رہیں تو آپ شکر ادا نہیں کر سکتے. صرف ایک اس بات کا, اس نے آپ کے کھانے کا سوراخ اور پھر جو کھا لیا اس کے نکلنے کے سوراخ کو رکھا ہو, اسی ایک بات پہ آپ نے پھر وہ جو نعمتیں آپ کھاتے ہیں, پھر وہ جو صحت اس نے دی ہوئی ہے, جو لباس عطا کیا ہے, جو گھر عطا کیا ہے, جو کچھ دیا ہے, مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر کس طرح سے شکر ادا ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف کا. جب یہ یقین کر لے گا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے, یہ جو آپ کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے یا آپ برائیوں سے نکل کر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یہ ایک تبدیلی ہے جو آپ کے اندر آئی ہے اور یہ اللہ کے نام کی وجہ سے. اب اگر اس دروازے سے باہر نکل کے آپ جو کچھ یہاں اس چار دیواری کے اندر کمایا اس کو یہاں پھینک جائیں تو اس میں قصور ان ہستیوں کا نہیں ہے. لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں, آپ ڈرے نہیں, کیونکہ غزل صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ بشارتیں سنائیں. سچی بات تو یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ دن آنے والا ہے جس سے پیغمبر بھی گھبرائے اور کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ کبھی خیال کر. وہ مالک الملک جس کی ساری بادشاہی اس کی, आप एक मामूली से अफसर के पास जाते हुए थर थर कांप रहे होते हैं, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह और फिर कहते भी हैं अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि उसने किसी की बादशाह की सिवाय मेरी बादशाह। जब आपने जाने सच्ची बात है, यकीन नहीं है ना मुझे है ना आपको है, अगर यकीन आ जाए ना तो आंख ना उठे, हाथ ना हिले, जुबान ना चले, यकीन नहीं। ये कहता रहता है मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं अल्लाह का जिक्र करने आया हूं, ये अच्छी चीज है, लेकिन अंदर खाने नहीं यकीन। अगर इसको यकीन हो तो इसकी जुबान जो है ना गुंग हो जाए, इसके कान बहरे हो जाए, इसकी आंखें अंधी हो, ये देख रहा है लेकिन वो चीज देखे जिससे इबरत पकड़े, वो चीज ना देखे जिससे अल्लाह ताला ने इसको मना फरमाया, वो चीज ना सुने। लेकिन यहां से उठता है तो घर में टीवी भी लगा होता है, वो आते नहीं है, वो जो तस्वीर और स्क्रीन पे आती है वो देखता है, बच्चों के साथ बैठ के देखता है, यकीन नहीं है ना। काश कि मुझे यकीन आ जाए और काश आपको यकीन आ जाए, और मैं आपको जो असल बात बतानी है वो बता दूं कि अल्लाह ताला किस चीज में खुश होता है। ना अल्लाह ताला को हमारे रोजों की जरूरत है, ना हज की जरूरत है, ना जकात की जरूरत है, ना हमारे सरकार की जरूरत है। अल्लाह खुश होते हैं जब अल्लाह की तारीफ की है। और क्या आप और मैं अल्लाह की तारीफ पूरी कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। वो फिर खुश होते हैं जब अल्लाह के पैगंबर की तारीफ की जाए, इसमें खुश होते हैं। इसमें मेरे बरगुजीदा बंदे जिनको मैंने चुना है ये उनकी तारीफ कर, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी तो अल्लाह खुश होगा। तो अल्लाह के रसूल की कैसे तारीफ होगी जब अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पे चले, सुन्नत पर तो अमल नहीं कर रहा, मैं जाकिर हूं, सुन्नत पर अमल नहीं करेगा आप बात दूर हो जाएगी। और मैं ये कहना नहीं चाहता, बाद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि रस्ते चलते हुए ना सलाम देते हैं ना, मैंने देखे अक्सर गाड़ी वाले जो वालेकुम अस्सलाम नहीं। एक दिन मैंने मस्जिद में ना एक मौलवी साहब को सलाम दिया, उन्होंने एक दफा आके खुतबा भी दिया था हमारी मस्जिद में, तो उसने यूं सर हिला, मैंने कहा मौलवी साहब ये अस्सलाम वालेकुम के जवाब में, कहते उसने हाथ जोड़ा। ये सलाम करना, सलाम का जवाब देना ये एक सुन्नत है, ये नहीं करते, एक गुरूर आ जाता है यार मैं तो जाकिर हूं। और ये एक आम सा आदमी जा रहे हैं और खुदा जानता है उसी के अंदर जो है ना विलायत छुपी हो, कल तुम उससे भी बदतर हो जाओ। ये मौत के आने से पहले पहले ये शैतान हमलावर होते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो काम की रही, उनको भी इसने भटका दिया। हाँ अल्लाह ताला जिसको बचा रहे, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह के रसूल की तारीफ की जाए, और अल्लाह के रसूल की तारीफ क्या है कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम पर चलना, सुन्नत रसूलुल्लाह की पैरवी करना। चले सारी नहीं कर सकता तो चल तो पड़े ना उस रास्ते में। और इसमें ये भी बड़ी लंबी तकरीर है, अगर मेरे पास वक्त हो और आपके लिए सुनने का वक्त हो तो हो सकता है मैं इसी पे अल्लाह के फजल करम से पूरी रात आपको बता सकूं। और आप फिर उस वक्त अपने गरीबान में झांक के देखिए और मैं भी देखूं, तो हम ये कहेंगे कि मैं तो अभी इस रास्ते में निकले ही नहीं, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ये जिनकी वजह से पहुंच जाते हैं ना वो तो पहुंचे पहुंचाए। और आप उस तरह आपने कभी देखे कि बाघ रोला आते पंजाबी में कहते हैं और अंग्रेजी में उसे कहते हैं कि वो तूफान आ गया, कभी उसको कोई नाम दे देते हैं कभी कोई नाम देते हैं, उसके अंदर जनाब चीजें जो भी पड़ी होती है ना वो ऊपर उठने शुरू हो जाती। और वो कैसे उठती हैं कि वो हवा के खिलाफ पैदा होता है और वो उनको ऊपर ले जाता है, हालांकि वो कागज का वो पुर्जा आप अगर लाख फूके मारे तो ऊपर नहीं जाता, लेकिन वो उड़ता है। ये वो रूहानी हवा है, ये वो रूहानी कुवत है जिसमें मेरे जैसा बदकार भी उड़ना शुरू कर देता है, और वो फिर समझता है यार ये तो मेरे अंदर कुछ था। यकीन जाने हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम बेयकीन के मारे हुए हैं, यकीन नहीं आ रहा। जब तक यकीन कामल नहीं पैदा कर लेंगे ये यकीन नहीं हो जाएगा कि आगे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लाएंगे बरहक है, और वो जो दिन आने हैं वो भी बरहक है। और उस दिन मेरे जैसा छोटा आदमी भी और जही साहब बड़ा सा आदमी भी वो अल्लाह के दूर खड़े होंगे और पिती मांग के खड़े होंगे, बलबूज से भी मांग। उस दिन का इतराक करें, ये जितनी कमाई करने का मौका मिल रहा है ये सिर्फ उस दिन की तैयारी के लिए कि अल्लाह के हुजूर खड़े हो। ना तो वहां कोई कोता, ना गौस, ना अब्दाल, ना नजरबाज, मुकबा या मुख्तार, कोई काम नहीं आएगा। हत्ता के सैयदना हजरत आदम सफीउल्लाह के पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि मैंने गंदम का दाना खाया था, अल्लाह की नाफरमानी का इरतकाब हो गया था, इसलिए मुझे शर्म आती है कि आपकी सिफारिश करूं। आप हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास चले जाए, वो भी उधर पेश करेंगे, वो कहेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाए, वो फरमाएंगे मैंने मेहमान को दस्तरखान से उठा दिया था, मुझे भी शर्म आती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाए, वो कहेंगे मैंने तो उस किब्ती को मारा था, मुका मर गया था, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाए, वो कहेंगे कि मेरे उठ जाने के बाद इन्होंने तसलीस का वो घर लिया था अकीदा, मुझे भी शर्म आती है। आप आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो एक मुद्दत तक आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े होंगे। फिर अल्लाह के जब जमात आएगा, जलाल जाएगा, तो फरमाएंगे कि आप सर उठाए, ऐ मेरे महबूब, आज हम आपकी हर बात मानेंगे, आपके सारे नाज उठाएंगे, आप हुक्म तो करें। तो अर्ज करेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, और उम्मतें भी वो आपकी उम्मत में दाखिल हो गई। तो जब आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का आपको यकीन हो जाए ना, तो आप झूठ ना बोले, आप अपनी नजरों को बुरी चीजों पर ना लगाएं। ये जो हजरत जी आके आपको बताते हैं ना, मैंने हजरत जी को जवानी में देखा है, हम इकट्ठे जाते थे, फौजी अफसर थे, 1966 में इकट्ठे रहते थे, खुदा की कसम मैंने मैं देखता था हजरत को, हम सफर कर रहे हैं, मजा है हजरत की आंख कभी दर जाइए इधर। अब तो हजरत माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, और ऐसी हस्ती कायनात में आपको नहीं नजर आएगी। अब वो जो बार बार कहते हैं कि जी इस दिल की कमाई का, ये दिल जो है ना कल्बे सलीम बांध ही नहीं रहा ना, क्योंकि इधर से उसकी धूल उठाते हैं ना, जब घर जाते फिर और धूल लगता है। ये एक ही तरीका है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप भी दुआ करें मेरे लिए भी, मैं आपके लिए, कि अल्लाह ताला में यकीन अता करूँ। जब यकीन आ जाएगा अल्लाह की वादानियत का, रसूलुल्लाह सल्लम की मोहब्बत आ जाएगी। अब अल्लाह की खुशी का मैंने एक बताया, एक तो है कि जब आप अल्लाह के रसूल की तारीफ करते हैं, और वो भी बता दिया कि तारीफ होती कैसे, फिर जब अल्लाह के बरगुजीदा बंदों की आप तारीफ करते हैं, किताबों में लिखा है कि औलिया का तज़किरा जो है ना वो भी इबादत है। जब आप औलिया किराम का तज़किरा करते हैं तो वो भी इबादत में लिखा जाता है, फिर आप उनकी जो तारीफ करते हैं ये भी मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। फिर जब आप किसी अल्लाह वाले के पास बैठते हैं ना, और उस डिग्री पे डिपेंड करता है कि कितनी मोहब्बत के साथ आपने उनको देखा है, या किस खुलूस के साथ आपने उनको देखने के लिए गए, ये निगाह हमारे दिल में मेरे अल्लाह की, ये भी अल्लाह की तारीफ है कि ये जो शख्स है इसके दिल में इतनी मेरी बुकत है, मेरी कदर है कि मेरे बंदे की तारीफ कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदे तो चंद ही मिलते हैं पूरी कायनात में, फिर उनमें भी कोई बहुत ऊंची मंजर के मिल जाए तो ये कुछ नसीबी समझे। मैं आपको कसम खा के बता दूं, मुझे रब काबा की कसम, ये आपको पूरी कायनात में इस वक्त कोई आदमी ऐसा नहीं मिले, और जब मिल गया तो यकीन कर लो इनके हाथ चूमने से आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक इनकी बताई हुई बात पर अमल नहीं करो। ये रिवायती पीर नहीं है कि आप आए, हाथ मिलाए और चले गए, ये तो अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्होंने आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आया करना है और किया है। ये वो हस्ती है, इनको इनका अपने घर का खाना ऐसा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये जो करिया करिया बताने आते हैं, इसी यकीन की खातर आते हैं कि आपके अंदर एक यकीन एक कामिल आ जाए कि मेरा अल्लाह जो है वो मुझे देख रहा है, اور میں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑنے ہیں جب ان کی تعریف کر دی ہے, اور ان کی تعریف یہی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے کام پر عمل ہے. اب بات بڑی لمبی ہو جائے گی, اب حضرت جی کی تشریف لانے والے ہیں, میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو ذکر ہے نا یہ آج نہیں شروع ہو, یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے شروع ہو گیا. یہ جو پہلا لطیفہ ہم کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کی قدم سے فیض آ رہے ہیں, وہ اس کے جو اصطلاح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جو اس کا مفہوم اور معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ وہ لطیفہ ہے جس کو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام والسلام بھی کرتے ہیں. اب ایک آدمی اگر جب حضرت رات فرماتے ہیں نا فضا چیر کر جائیں تو فضا میں آپ اڑ تو سکتے نہیں ہیں بلکہ آپ کے لیے تو چلنا مشکل ہو جائے. یہاں سے لے کے سیالکوٹ شہر تک یہ جو فضا کو چیر رہے ہیں اس کا ہے کہ آپ ادراک کریں کہ آپ وہاں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام والسلام یہ کرتے تھے. آج میرے جیسا کمینہ اس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ یہ قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے اور ضربے لگا رہے اللہ کے نام, یہ ہے فضا کو چھوٹ دے جانا. پھر آپ اس لطیفے کے اوپر جو ہے نا آپ زور لگائے نئے ساتھیوں کے لیے. اچھا اب میں رات کو میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرنا ہے. اب ان کو کیسے کہتے کہ جی آپ نئے تو اخیر میں بیٹھ جائیں. اخیر میں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے انوارات ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کو فائدہ ہوگا. اب جو بیٹھنا آسان ہوتا ہے اگر چہرے پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ میں بڑی کوشش کروں کہ بھائی ان پہ توجہ کروں تو وہ سارے واپس میری طرف بھی آ رہے ہیں. یہ ایک تو یہ دیکھیں کہ جو سینئر ساتھی ہیں وہ اس لیے ادھر بٹھاتے ہیں کہ وہ کوئی عمر میں بڑے ہیں یا ویسے کوئی بڑی ان کو طریقہ ذکر آ گیا ہے. تو جو نیا آدمی ہے یاد اس کو بتا کے لائیں, بس آپ اتنا بتا دیں کہ ہمارے حضرت بہت بڑی ہستی ہیں اور آپ آ جائیں. آپ اس کو بتائیں کہ یار یہ ذکر سکھاتے ہیں آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کریں. اگر تو وہ شخص آپ کے ساتھ صبح و شام سات دن ذکر کر لیتا ہے پھر تو سمجھے کہ اس کو کوئی ذکر کی قدر آ گئی, اور اگر وہ صرف آپ کے حضرت کی زیارت کے لیے آتا ہے تو آپ نے اس کا بھی وقت ضائع کیا اپنا بھی وقت ضائع. اور وہ سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دل ہے نا دل جس میں بعض دفعہ اسٹنٹ بھی ڈال دیتے ہیں نا, اسی دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر رکھا ہوا جو ہر انسان کے اندر ہو. اسی جوہر کو جو ہے نا اور یہ کرام اپنی ضربوں سے نہ چمکا دے, یہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے ہیرے کی طرح جناب اس کی چمک ہوتی ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے. یہ آج نہیں شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا. اب یہ جیسے جیسے بڑھتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر کاروبار کی حلاجت آتی ہے, پھر یہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی دھوڑ پڑتی ہے, پھر یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, پھر رشتہ داروں کے ساتھ اس کا نہیں ہوتا, پھر بہن بھائیوں کی ایک ایک کنار ایک ایک مرنے کے اوپر ان کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے, یہ پھر جو ہے نا مردہ ہو جاتا ہے. یہ صرف شراب پینے سے نہیں مردہ ہوتا, یہ شراب سے بھی بدترین گناہ جو میں نے گنوائے ہیں. کسی کا حق مارنا, کسی کے ساتھ غیبت کرنا, کسی کی چغلی کرنا, کسی جھوٹ بولنا, یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کی غلاظت تہہ در تہہ اس اوپر جم جاتی ہے. وہ روشنی جو یہ لے کے آیا تھا نا وہ نہیں رہتی. اب اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا, وہ بھی کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے, اور وہ بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ بھی رات کو سو جاتا ہے. یہ پھر حیوان, بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہے, اور حیوان میں آپ کو بتاؤں سور بھی شامل ہے. یہ پھر نہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی شکل ویسی بنا لیتے ہیں. جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں نا دنیا میں اس کی باطنی شکل ویسی ہو جاتی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں کہ ہمارے ذہن رنگ روغن نہیں بدلتا, ورنہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری جو اصلی حالت ہے وہ بدل دی ہوتی. اب شیخ کیا کام کرتا ہے اور شیخ کا درجہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بلند رکھے ماں باپ سے, تو وہ تو آدمی عمر سے اس کو خاک میں لے آئے اور یہ خاک سے اٹھا کے آدمی عمر میں لے جائے. اس لیے ماں باپ سے بھی بڑا درجہ ہے بشر, وہ جو سبب بنے اس کو یہاں اس خاکی دنیا میں لانے کی, اور یہ سبب بنتے ہیں ان کو یہاں سے اٹھا کے عالم عمر میں لے جائے. अब वो बताते ही हैं कि ये दिल जब साफ होगा ना, फिर आपको एहसास होगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये गलत काम है। अगर तो आप वापस आ जाते हैं तो ठीक है, तो अगर आपने उसको दबाने की कोशिश की तो ये दाग एक लग गया, हालांकि पता था आपको कि मैंने गलत काम किया। अगर उसी वक्त तौबा कर लेते, अस्तगफार करते, बल्कि अगर हिम्मत हो ना, वो तो बहुत कम लोगों में है जो दो वक्त के मामूल में थोड़ा सा सिर मार लें, वरना तो चाहिए कि जब इससे कोई गुनाह हो जाए तो बैठ जाए उधर अल्लाह का जिक्र करें ताकि वो हिरासत में दूर हो इससे। जब तक ये नहीं होगा ना, ये दिल जो है ना साफ नहीं होगा। तस्बीहात पढ़ने से आपको सवाब तो मिल सकता है, कुरान मजीद की तिलावत से सारा हो, लेकिन ये जो रूह है ना ये इस तन से नहीं जुदा होती जब तक इस पर अल्लाह अल्लाह की जरबे नहीं लगाते, और इसको जुदा करना जरूरी होता है, वरना फिर कहते हैं पढ़ो सूरत यासीन की इधर दम निकले, इस रूह को निकालें यहां से ताकि जिंदगी में इसको आदत हो जाए निकलने की। वो जौर जो है ना, उस जौर के ऊपर से मिट्टी हटानी है। अब हर आदमी को पता है कि मैंने कितनी इसके ऊपर मिट्टी बिठाई, ये कोई नहीं कह सकता नहीं मैं तो थी। वो बच्चा हो बूढ़ा हो, जब वो बलूगत को पहुंच जाता है तो इसे एहसास हो जाता है कि आज मैंने ये गलती की है। हर आदमी जानता है कि मैंने उस वक्त से लेकर इस लम्हे तक कितने गुनाह किए, किस किस का हक मारा है, किस किस के साथ किया है। वो जो गुलाजत है उसको दूर करने के एक ही तरीका है, और वो है अल्लाह के नाम की जरब। और अल्लाह के नाम की जरब जो है ना वो इसी दिल से, ये जो मैंने अर्ज किया था, यहां से आपने खींचने लफ्ज अल्लाह सांस के साथ, और सांस ही के साथ फिर आपने जरब लगानी है होगी, और ये फिर मुसलसल करना है। ये नहीं कि एक जरब आपने देख के लगाई फिर दूसरी का इंतजार किया फिर तीसरी का, नहीं, ये मुसलसल 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जब तक जिक्र हो रहा है तो इसकी तवज्जो इधर हो। और मैं एक बात को यह अर्ज कर दूं, ये किताबों में तो लिखा होगा लेकिन हमने इन बुजुर्गों की खिदमत में बैठ के ये सीखा है कि जब आप अल्लाह का नाम मोहब्बत से लेना देते हैं ना तो आपकी खुद ब खुद अगला सांस जो मोहब्बत से निकलता होता है। फिर एक वो जो लिखे है ना अभी शरीर में कि मजमूनाना, वो मजमूनाना जो है ना आपके ऊपर वो शक्ल तारी हो जाती है। आप अगर सोच सोच के ये करें आप मैं थक गया आप इतनी लगा ली, इसको मोहब्बत से अल्लाह का नाम जितनी मोहब्बत से खींचेंगे उतने ही आप पर मजमूना जो है हालत तारी हो। उस मजमूनाना और मैं जब आप वारफ्तगी से करेंगे ना तो फिर आपको फायदा मिलेगा। अब मैं आपके सामने खड़े होकर तो ऐसा बता नहीं सकते, लेकिन ये बता दूं कि यहां से आप सांस खींचे अल्लाह और फिर रूह की जरा वही लगे। आपने खींचा है अल्लाह, अब ये ऊपर गया, लेकिन इतना नहीं कि खींचते रहे और फिर नीचे आई नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जब तक नए साथियों के लिए खसूस है, ये जब तक हजरत कराते हैं और ये फरमाते नहीं है कि अभी बंद कर रहे सांस, या जिन साथियों के मुराकबात हैं वो तो आगे जाएंगे, जो नए साथी हैं वो दिल पर तवज्जो करके बैठे और अल्लाह ताला के नाम जो है ना उस सुनने की कोशिश करें इस दिल से। फिर चंद रोज की बात है, सच्ची बात है, ये ज्यादा भी नहीं लगता लेकिन मेहनत की बात है, फिर आपको खुद एहसास होगा अब मैं मुझे जो है ना। और वो कहते हैं कि कलब कैसे जारी होता है, तो मैं अर्ज कर दूं कलब का जारी होना ये नहीं कि ये फट फट पढ़ करते, कलब का जारी होना कि ये है कि ये शिफ्ट कर जाता है उन बुराइयों से जो आप पहले कर रहे थे जब आपने जिक्र नहीं शुरू किया था, इसकी जो वहां से शिफ्टिंग होती है ना ये कलब का जारी, ये अल्लाह का नाम ले रहा है आपको यकीन हो जाना चाहिए। यकीन के ऊपर मैंने एक लंबी तकरीर कर दी थी, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए अगर मैंने कोई गलत बात की हो, और जो कुछ अच्छा कहा है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हजरत जी की नैयत से हम फायदा उठाएं परवरदिगार उन कबूल फरमाए। तो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।